श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 45 कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह जानकर कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं, भगवान ने यह सोचा कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए, अतः उन्होंने अपने भक्तों को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया। सातवतों में महानतम भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई सहित अपने माता पिता के पास पहुँचे। वे उन्हें विनय पूर्वक शीश झुकाकर और आदर पूर्वक हे माते तथा हे पिताश्री संबोधित करके प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, हम दो पुत्रों के कारण आप तथा माता देव की सदैव चिंताग्रस्त रहते रहे और कभी भी हमारे बाल्यकाल पौगंड तथा किशोर अवस्थाओं का आनंद भोग नहीं पाए। भाग्य द्वारा वंचित हम दोनों न तो आपके साथ रह पाए न ही अधिकांश बालकों को उनके माता पिता के घर में मिलने वाले लाड प्यार के सुख को हम भोग सके। मनुष्य अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और उसके माता पिता ही हैं जो इस शरीर को जन्म देते और उसका पोषण करते हैं। अतः कोई भी मर्त्य प्राणी एक तो वर्ष के पूरे जीवन काल तक उनकी सेवा करके भी मात्र पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपने शारीरिक साधन तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है, उसे मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ माना जाता है। इस तरह हमने इतने सारे दिन आपका समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ में ही गवा दिए, क्योंकि हमारे मन सदैव कंस के भय से विचलित थे। हे पिता तथा माता, आप हम दोनों को आपकी सेवा न कर पाने के लिए क्षमा कर दें। हम स्वतंत्र नहीं थे और क्रूर कंस द्वारा अत्यधिक त्रस्त कर दिए गए थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड के परमात्मा एवं अपनी अंतरंगा भ्रामक शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट होने वाले भगवान हरि के वचनों से मोहित होकर उनके माता पिता ने हर्ष पूर्वक उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन किया। भगवान के ऊपर अश्रुओं की धारा ढुलकाते हुए स्नेह की रस्सी से बंधे उनके माता पिता बोल न पाए। हे राजन, वे भाव विभोर थे और उनके गले अश्रुओं से अवरुद्ध हो चले थे। अपने माता पिता को इस तरह सांत्वना देकर तथा देवकी पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को यदुओं का राजा बना दिया। भगवान ने उनसे कहा, हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, अतः आप हमें आदेश दें। दरअसल ययाति के शाप के कारण कोई भी यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्योंकि मैं आपके निजी सेवक के रूप में आपके पार्षदों के बीच उपस्थित हूँ, अतः सारे देवता तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आपको अभिवादन करने के लिए सिर झुकाते हुए आएंगे। तो फिर मनुष्यों के शास्त्रों के लिए क्या कहा जाए? तत्पश्चात भगवान अपने सारे नजदीकी परिवार वालों को तथा अन्य संबंधियों को उन विविध स्थानों से वापस लाए जहां वे कंस के भय से भाग कर गए थे। उन्होंने यदुओं, वृषणियों, अंधकों, मधुओं, दाशारहों, कुकुरों इत्यादि जाति पक्ष वालों को सम्मान पूर्वक बुलवाया और उन्हें सांत्वना भी दी, क्योंकि वे विदेशी स्थानों में रहते रहते थक चुके थे। तत्पश्चात ब्रह्मांड के सत्रष्टा भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके अपने घरों में फिर से बसाया और बहुमूल्य भेंटों से उनका सत्कार किया। इन वंशों के लोगों ने भगवान कृष्ण तथा संकर्षण की बाहुओं का संरक्षण पाकर यह अनुभव किया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। इस तरह वे अपने परिवारों के साथ अपने घरों में रहते हुए पूर्ण सुख का भोग करने लगे। कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति से अब उन्हें सांसारिक ज्वर नहीं सताता था। ये प्रेमी भक्त प्रतिदिन मुकुंद के कमल सदृश नित्य प्रफुल्लित मुख को देख सकते थे, जो सुंदर दयामय मंद हाथ युक्त चितवनों से विभूषित था। यहाँ तक कि उस नगरी के अत्यंत वृद्ध जन भी शक्ति तथा ओज से पूर्ण युवा लगने लगे, क्योंकि वे अपनी आंखों से निरंतर भगवान मुकुंद के कमल मुख का अमृत पान करते थे। तत्पश्चात हे महान राजा परीक्षित, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण भगवान बलराम के साथ नंद महाराज के पास पहुँचे। दोनों विभुओं ने उनका आलिंगन किया और उनसे इस प्रकार बोले। कृष्ण और बलराम ने कहा, हे पिताश्री, आप तथा माता यशोदा ने हम दोनों को बड़े स्नेह से पाला पोसा है और हमारी इतनी अधिक परवाह की है। निसंदेह माता पिता अपने संतानों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। वे ही असली माता पिता हैं जो पालन पोषण और देख रेख करने में असमर्थ संबंधियों द्वारा परित्यक्त बालकों की देखभाल अपने ही पुत्रों की तरह करते हैं। हे पिताश्री, अब आप सब ब्रज लौट जाएं। हम आपके शुभ चिंतक मित्रों को कुछ दुख दे लेने के बाद तुरंत ही आपको तथा अपने उन प्रिय संबंधियों को देखने के लिए आएंगे जो हमारे वियोग से दुखी हैं। इस प्रकार नंद महाराज तथा ब्रज के अन्य लोगों को सांत्वना देकर अच्युत भगवान ने उन सबों का वस्त्र, आभूषण, घरेलू पात्र इत्यादि उपहारों से आदर समेत सत्कार किया। कृष्ण के शब्द सुनकर नंद महाराज भाव विवहल हो गए और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगाया। तत्पश्चात वे ग्वाल जनों के साथ व्रज लौट गए। हे राजन, तब शूरसेन पुत्र वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों का द्विज संस्कार कराने के लिए एक पुरोहित तथा अन्य ब्राह्मणों की व्यवस्था की। वसुदेव ने इन ब्राह्मणों की पूजा करते हुए तथा उन्हें सुंदर आभूषण और सुंदर आभूषणों से सजी बचनों युक्त गौवें भेंट करके सम्मानित किया। ये सभी गौवें सुनहरे हार तथा रेशमी मालाएं धारण किए थी। तब महात्मा वसुदेव को कृष्ण तथा बलराम के जन्म के अवसर पर मन ही मन दान की गई गौवों का स्मरण हो आया। कंस ने वे गायें चुरा ली थी, किंतु अब वसुदेव ने उन्हें फिर से प्राप्त किया था और उन्हें भी दान में दे डाला। दीक्षा द्वारा द्विजत्व प्राप्त कर लेने के बाद व्रत निष्ठ दोनों भाइयों ने यदुवंश के गुरु गर्ग मुनि से ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। अपने मनुष्य जैसे कार्यों से अपने पूर्ण ज्ञान को भीतर ही भीतर रखते हुए ब्रह्मांड के इन दो सर्वज्ञ भगवानों ने ज्ञान की समस्त शाखाओं के उद्गम होते हुए भी गुरुकुल में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की। इस तरह वे काशीवासी सांदीपनी मुनि के पास पहुंचे, जो अवंती नगरी में रह रहे थे। सांदीपनी इन दोनों आत्म संयमी शिष्यों के प्रति बहुत ही उच्च विचार रखते थे, जिन्हें उन्होंने अक्तमात प्राप्त किया था। दोनों ने गुरु की साक्षात भगवान जैसी ही भक्ति पूर्वक सेवा करते हुए अन्यों के समक्ष अनिंद्य उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जाती है। ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु सांदीपनी उनके विनीत आचरण से संतुष्ट थे, अतः उन्होंने दोनों को सारे वेद 6 वेदांगों सहित तथा उपनिषद पढ़ाए। उन्होंने दोनों को रहस्यों सहित धनुर्वेद की शिक्षा दी, साथ ही मानक विधि ग्रंथ तर्क तथा दर्शन विषयक वाद विवाद की विधियां और राजनीति शास्त्र के 6 वेदों की भी शिक्षा दी। हे राजन, पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण तथा बलराम स्वयं ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि प्रवर्तक होने के कारण किसी भी विषय की व्याख्या को एक ही बार में सुनकर तुरंत आत्मसात कर सकते थे। इस तरह उन्होंने एकाग्रचित से 64 कलाओं तथा चातुरियों को उतने ही दिनों तथा रातों में सीख लिया। तत्पश्चात हे राजन, उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर अपने गुरु को प्रसन्न किया। हे राजन, विद्वान ब्राह्मण सांदीपनी ने दोनों विभुओं के यशस्वी तथा अद्भुत गुणों एवं उनकी अति मानवीय बुद्धि के बारे में ध्यान पूर्वक विचार किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श करके उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने नन्हे पुत्र की वापसी को चुना, जो प्रभास क्षेत्र के समुद्र में मर चुका था। असीम पराक्रम वाले दोनों महारथियों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, और तुरंत ही अपने रथ पर सवार होकर प्रभास के लिए रवाना हो गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे समुद्र तट तक पैदल गए और वहां बैठ गए। क्षण भर में समुद्र का देवता उन्हें भगवान के रूप में पहचान कर श्रद्धा रूप में भेंट लेकर उनके निकट आया। भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए, जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है। समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान कृष्ण, उसका हरण मैंने नहीं अपितु तिथि के वंशज पंचजन नामक एक दैत्य ने किया है, जो शंख के रूप में जल में विचरण करता रहता है। सागर ने कहा, निसंदेह उसी दैत्य ने उस बालक को चुरा लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण समुद्र में घुस गए, पंचजन को ढूंढ लिया और उसको मार डाला, किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर वह बालक नहीं मिला। भगवान जनार्दन ने वह शंख ले लिया जो उस दैत्य के शरीर के चारों ओर उगा हुआ था और रथ पर वापस चले गए। इसके पश्चात वे यमराज की प्रिय राजधानी संयमनी गए। भगवान बलराम के साथ वहां पहुंचकर उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया और उस गूंजती हुई आवाज को सुनते ही बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला यमराज वहां पहुंचा। यमराज ने दोनों विभुओं की अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा की और तब प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान विष्णु, मैं आपके लिए तथा भगवान बलराम के लिए जो सामान्य मनुष्यों की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या करूं? भगवान ने कहा, अपने विगत कर्म बंधन का भोग करने से मेरे गुरु का पुत्र आपके पास यहाँ लाया गया है। हे महान राजा, मेरे आदेश का पालन करो और अविलंब उस बालक को मेरे पास ले आओ। यमराज ने कहा, जो आज्ञा, और गुरु पुत्र को सामने ला दिया। तत्पश्चात यदुओं में श्रेष्ठ उन दोनों ने उस बालक को लाकर अपने गुरु को भेंट करते हुए उनसे कहा, कृपया दूसरा वर मांगिए। गुरु ने कहा, मेरे प्रिय बालको, तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के किस्य दायित्व को पूरा कर लिया है। निसंदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरु को और क्या इच्छाएं हो सकती हैं? हे वीरो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा यश संसार को पवित्र बनाए और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्तुतियां तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहें। इस तरह अपने गुरु से विदा होने की अनुमति पाकर दोनों भाई अपने रथ पर बैठ अपनी नगरी लौट आए। यह रथ वायु की तेजी से चल रहा था और बादल की तरह गूंज रहा था। सारे नागरिक जिन्होंने अनेक दिनों से कृष्ण तथा बलराम को नहीं देखा था, उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। लोगों को वैसा ही लगा जिस तरह धन खोए हुओं को उनका धन वापस मिल जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा नामक 45वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।